तो मालिक ने कहा इसके पैसे दे दो बेचारे के। तो मालिक का हुक्म पाकर वो तुरंत उनका पैसा दे दो, को विदा कर दिया। वो बात उसके लग गई लाला बाबू के। उसने कहा भैया अपना तलपट और सब जोड़ करके देख लो, अरे ये सब इसका तजवीज कर दो रुपयों का, और कैसे क्या करना है। क्यों बोले आठ बेला ना, और समय कहाँ है, अब मृत्यु तो नजदीक आ गई है, अब समय कहाँ। तो वो सब कुछ एक प्रकार से तथा कभी की तथा जुगत कर करके, अरे वो अपने घर से चला गया। तो चित्त में बैराग हो गया, क्षण मात्र में झटपट बैराग हो गया। तो क्षण मात्र के वहां बैराग हो जाता है, मौके के ऊपर कोई बात लग जाती है। तो ये मालूम हो जाता है कि अब तुम्हारी मृत्यु तो नजदीक ही है, पर अपने काम शीघ्र करना चाहिए। जब मृत्यु नजदीक दिखती है तो इतने समझो कि चित्त में बैराग होता है। इसी बात को लेकर के नारायण स्वामी ने कहा, दो बातन को भूल मती, जो चाहत कल्याण नारायण एक मोत को, दूजे श्री भगवान सियावर रामचंद्र की जय। कि दो बातन को नहीं भूलना चाहिए यदि तुम कल्याण चाहते हो, तो एक तो नारायण को और एक जो है तो मौत को। मौत को याद करने से उससे एक तो पाप नहीं बनता, और एक मौत को याद कर लेने से भगवान का भजन नहीं छूटता। वो देखता है कि भी मरना है। तो संपूर्ण जो पदार्थ है ये सब काल के मुख में पड़े हैं, और प्रत्यक्ष जो ऐसा समझो कि इसको काल ऐसा ग्रास रहा है। यह बात जब ध्यान में आ जावे तो तुरंत वैराग्य। महाभारत के बनपन के में लिखा है कि यक्ष ने ये बात पूछी थी कि आश्रय क्या है, तो राजा युधिष्ठिर ने ये उत्तर दिया था कि रोज रोज जो है तो लोग यमलोक को जा रहे हैं, और ये देख करके भी एक प्रकार से हम लोगों को अपनी मृत्यु जो तो निकट नहीं दिखती ये आश्रय। तो लोक ही नहीं, ये सारी दुनिया सारा संसार जड़ चेतन सारे पदार्थ एक प्रकार से क्षण क्षण के बीच के मां बदल रहे हैं, उनका विनाश हो रहा है। और एक प्रकार के थी हम इसकी तरफ ध्यान दे करके नहीं देखते हैं। सब क्षण परिणामी है, जितने जो जड़ पदार्थ हैं, तो इनको देख करके हमको एक प्रकार से उपदेश लेना चाहिए। इस प्रकार से हम उपदेश ले तो हमारा बहुत ही शीघ्र कल्याण हो सकता है। उपदेश हमारे को हर चीज से मिलता है, किसी भी चीज की तरफ हम ख्याल करें तो उपदेश हमारे को हर चीज से मिलता है। ये सभी चीजें हमारे को उपदेश दे रही, और जिस विषय का हम उपदेश चाहे उसी विषय का उपदेश हमको ऐसा मिल रहा है, किंतु हम ध्यान नहीं देते, विचार नहीं करते, इसलिए उसका विशेष असर नहीं होता। जैसे ये जो हमारी चतर है, इससे हर एक प्रकार का उपदेश हम ग्रहण कर सकते हैं। संकेत से ये चतर हमारे को बतला रही है, यदि कहो कि ये चतर जो है शरण के विषय में, शरणागति के विषय में क्या उपदेश देती है। बोलो देखिए। बोलो कैसे। आप देखिए, ये जो चतर है इसका जो मालिक है, जो कुछ करना चाहता है ये समझो कुछ भी नहीं कहती। चतर ने अपना सर्वस्व अपने मालिक के समर्पण कर रखा है। थोड़ी बार के वास्ते मान लो कि इस चतर का मैं मालिक हूँ, इस चतर को उठा करके मैं मस्तक पर रखता हूँ, तो ये चतर यूं नहीं कहती कि मैं तो आपकी हूँ और आपकी शरण हूँ, मुझको सिर पर क्यों रखते हो। इस चतर को मैं चरणों में रखता हूँ, तब ये चतर यूं नहीं कहती कि उसको आप चरणों में क्यों रखते हो। इस चतर को मैं फाड़ डालता हूँ, तब ये कुछ भी नहीं कहती। इस चतर को उठा करके मैं आग में झोंक देता हूँ, तो भी ये कुछ भी नहीं कहती। तो इससे हमको ये उपदेश लेना चाहिए, ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से यह चतर अपने मालिक के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण कर रखा है, इसी प्रकार से हम अपना जो मालिक परमात्मा है उसको हम अपने आप को अपने सर्वस्व को समर्पण कर देवे, उसका नाम शरण है। जैसे राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान बावन को अर्पण कर दिया था और अपने आप को भी अर्पण कर दिया था, इस प्रकार से सर्वस्व भगवान के समर्पण कर देना जो है ये भगवान की शरण है। तो ये शरण का उपदेश हमारे को इस चंद्र से मिलता है, और जैसे समझो कि एक प्रकार से कठपुतली होती है वो सूत्रधार के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण किए हुए हैं, सूत्रधार जैसे उसको नचाता है वो नाचती है, और जिस प्रकार से उसके लिए विधान कायम करता है जय पराजय हार जीत, तो वो एक प्रकार से उसी प्रकार से वहां कोई भी आपत्ति नहीं है। तो कहो कि वो तो जड़ है, बोलो हम चेतन होकर मैंने क्या किया, बल्कि हम चेतन है तो और उससे हमारे में विशेषता होनी चाहिए। तो जैसे अर्जुन ने समझो कि भगवान के प्रति अपने आप को अर्पण कर दिया था और अपने रथ को अर्पण कर दिया था और घोड़ों को रथ को घोड़ों की बागडोर को सब भगवान के अर्पण कर दिया था, और भगवान जिस प्रकार से थी चलाते थे वैसे ही चलते थे, इसी प्रकार से थी हम जो है भगवान के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण कर दे, हमारे शरीर रूपी रथ को भगवान के अर्पण कर दें और समझो इंद्रिया रूप जो घोड़ा है इनको और मन रूपी लगाम को भगवान को अपना सारथी बना करके जैसे अर्जुन ने बनाया था ऐसा हम भगवान के हाथ में सौंप दे और जो भगवान चलावे जो चले हाँ सांस करके चले, समझो जो जड़ जो कठपुतली होती है उसमें तो जड़ता इस वास्ते वो हाँस नहीं सकती, उसमें संतोष असंतोष कुछ नहीं हो सकता, किंतु हम तो चेतन है तो हमारे में विशेष होना चाहिए कि हम हर वक्त चित्त के वहां प्रसन्न होते रहे और सब जो कुछ हो रहा है इसको भगवान की लीला समझते रहे और सर्वत्र सब में हम भगवान का दर्शन करते रहे, क्यों भगवान सब में व्यापक है ही, भगवान ने ये बात कही है कि मैं सब में व्यापक हूँ, मेरे करके सब है सो परिपूर्ण है, इस प्रकार समझ करके कि भगवान का सब में दर्शन करके हम खुश हो और जो कुछ हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है या भगवान की लीला मान करके हम खुश हुए तो हमारा बहुत ही शीघ्र कल्याण हो सकता है। तो ये एक प्रकार से शरणागत की जो बात कही सो ठीक है, किंतु अब ये पूछना कि क्या चतुर चेती हमारे को अपने बैराग का उपदेश भी मिल सकता है, बोलो जरूर। यह जो चतुर है समझो कि पुरानी होतली, पुरानी होतली तो यह चतुर संकेत करती है कि जैसे मैं पुरानी हो गई ऐसे तुम भी पुरानी हो चले, ये तुम्हारा जो शरीर है ये भी वृद्ध हो गया पुराना हो गया, और पुराना होने के बाद के मां आगे जाकर क्या होता है कि वो चीज खत्म हो जाती है। तो जैसे यह चंद्र कहती है मैं एक प्रकार से खत्म होने के नजदीक हूँ, ऐसे तेरा शरीर भी एक प्रकार से पुराना हो गया ये भी मरने के नजदीक है, तो इस प्रकार का उपदेश हम बैराग के विषय में चंद्र से ले सकते हैं, और इसके लेने से अवश्य बैराग होना चाहिए, यदि नहीं बैराग होता है तो हमने चंद्र से शिक्षा ग्रहण नहीं की। फिर ये बात है कि ठीक है जैसे चंद्र से वैराग होता है ऐसे चंद्र से ज्ञान भी मिलता है क्या, बोले ज्ञान भी मिलता है, इस चंद्र को देखने से ये ज्ञान पैदा होता है कि एक ऐसा समय था कि यह संसार के वहां चंद्र नहीं थी और एक दिन ऐसा समय आएगा ये चंद्र संसार के वहां नहीं है। अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत और अव्यक्त निधनाने तत्र का परिदेवना गीता अध्याय 2 श्लोक 28 के बीच में भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ये सारे भूत प्राणी हैं आदि के बीच के वहां अव्यक्त थे अप्रगट थे और आखिर के वहां भी अप्रगति है, तो बीच की अवस्था में क्षणिक काल के वास्ते जो ये प्रतीत होते हैं तो इनके विनाश के बीच के वहां शोक कौन बात का, ये भगवान उपदेश देते हैं। तो इस चंद्र से भी हमारे को ये उपदेश मिलता है कि ये चंद्र न तो पहले थी और न आगे रहने वाली है, और बीच में थोड़ा दिन के लिए प्रतीत होती है तो इसका विनाश हो जावे तो इसके वास्ते कौन चिंता है, तो ये चंद्र हमारे को संकेत करके कह रही हम लोगों को, इसे यदि हम शिक्षा ले कि तुम अपने शरीरों की तरफ ख्याल करके देखो आज के 100 वर्ष के पहले तुम्हारे शरीर नहीं थे और समझो कि 100 वर्ष के बाद भी तुम्हारे किसी के शरीर नहीं रहेंगे, तो न तो पहले थे और न भावी में ही हैं, ये थोड़े काल के लिए ये एक प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं तो इनके विनाश में कौन बात की चिंता है, ये तो वास्तविक के बीच के वहां है ही नहीं, आकाश जो तो एकदम शुद्ध है, उसके वहां कभी बादल हो जाते हैं और मिट जाते हैं, हो जाते हैं और मिट जाते हैं। इसी प्रकार से ये सारा दृश्य, सारा संसार और सारे शरीर इसे माया के बीच के माँ, प्रकृति के माँ उत्पन्न होते और विनाश होते, उत्पन्न होते विनाश होते हैं। एक प्रकार से थी जो विवेकी है वे इसके माँ भूलते नहीं। आकाश जो है सुसना निर्लेप ही रहता है बादलों के उत्पन्न होने से और गर्जने बरसने से और बिजली चमकने से और समझो कि मिट जाने से अपने आकाश पर कोई असर नहीं आता, वो जुगा तिर रहता है। तो आकाश की जो है तो समझो कि आत्मा है या यूं कहो कि परमात्मा है। उस परमात्मा में सृष्टि यूं उत्पन्न होती है, विनाश होती है, उत्पन्न होती है, विनाश होती है। परमात्मा कभी इसके विकार से विकारी नहीं होते, परमात्मा निर्विकार है। इस प्रकार का समझना ही ज्ञान है। तो ये अपने कहते कि भाई देख के वहां तुम्हारे जो अभिमान है वो बेकार है, समझा। तुम ये सोचो कि देह जो है तुम्हारा उत्पन्न होता है और विनाश होता है, जैसे आकाश में बादल उत्पन्न होते हैं और विनाश होते हैं, जैसे यह चंद्र जो है तो एक दिन उत्पन्न होगी एक दिन विनाश हो जाएगी, या संसार के मान नहीं रहेगी। तो आ कहती है इसी प्रकार से यौन मात्र पदार्थों की यही दशा है। जितने जो पदार्थ तुम्हारे को दिख रहे हैं न तो कभी पहले थे और न ये रहने के हैं, इसलिए क्षणिक काल के वास्ते जो प्रतीत होने वाले जो पदार्थ हैं उनको सत्य समझ करके और उसे के संयोग और वियोग में सुख और दुख का एक प्रकार से कल्पना करना है, ये मूर्खता है। ये एक प्रकार से ज्ञान का उद्देश्य इस तरह से मिलता है कि देखो स्वप्न के बीच के मां स्वप्न के शरीर में मनुष्य अहम भाव कर लेता है और उसे में बहुत पदार्थों में ऐसा ममता का भाव कर लेता है कि ये शरीर में पूरे संसार के पदार्थ मेरे, अरे दूसरों के। जिनमें प्रबुद्धि है उसके माँ तो द्वेष होता है, जिसमें हैंग बुद्धि है उसके माँ राग। इस प्रकार से राग द्वेष और हर्ष शोक होते रहते हैं स्वप्न काल के बीच के माँ, किंतु जब आंख खुल जाती है तो फिर मालूम होता है कि कहाँ तो वो संसार और कहाँ हंता ममता और कहाँ तो राग द्वेष और कहाँ हर्ष शोक, सब एक प्रकार से समझो कि अपने आंख खुलने के बाद में ज्ञान हो जाता है कुछ भी नहीं है। तो जैसे स्वप्न का संसार है इसी प्रकार का यह संसार है। वास्तु के भीतर के बीच के मां जो कुछ प्रतीत होता है वो तो है नहीं, और जो है वो प्रतीत होता नहीं। यह सारी संसार जो स्वप्नवत है, जब इस प्रकार का ज्ञान हो जावे तो बस समझो कि आंख खुल जावे, यानी ज्ञान के नेत्र खुल जावे और इसका सुधार होकर के उद्धार हो जावे। तो ये बात भी हमारे को इस चंद्र से मिलती है, और चंद्र से हम लोगों को विचार करके देखें तो समझो कि कर्तव्य का उपदेश भी मिलता है, कर्म का उपदेश भी। कर्म का उपदेश कैसे, या चंद्र जो है सो अपने निष्काम कर्म योग का उपदेश भी देती है। निष्काम कर्म योग का उपदेश चंद्र से कैसे मिले कि संकेत, यह बोलती तो नहीं, इससे तो एक प्रकार से संकेत से समझना पड़ता है। इस चंद्र को देखने से थी स्वाभाविक ये ज्ञान होता है ये कौन काम की चीज है। तो देखने से आता है कि ओढ़ने की चीज है और दूसरी बात के बिछाने की चीज है, बिछा भी सकता है और बोले चाहते उसका कोई कपड़ा भी सिमा सकता है। त्वचा जो है चमड़ी इसकी रक्षा के काम की चीज है और कोई काम की चीज नहीं, खाली इससे शरीर की रक्षा हो सकती है। समय के अनुसार शरीर की रक्षा हो सकती है। हमारी जो त्वचा जो इंद्रिय है चमड़ी जो है उसके मां ये मदद करती है। बहुत बलोटों का काम की चीज नहीं, ये कोई खाने की चीज नहीं, कोई एक इसको खा नहीं सकता। यदि कोई पशु खावे तो हम लोग हंसते हैं कि देखो ये पशु है सो गाय है सो मूर्ख है, ये खाने की चीज थोड़ी। ये कोई सूंघने की चीज भी नहीं कि इसमें कोई गंध आती हो, इसमें कोई शब्द भी सुनाई नहीं देता कि जो हम कान के लगा कर इसमें कोई शब्द ऐसा सुने। तो न तो ये कर्ण इंद्रिय का विषय है, न कोई नासिका इंद्रिय का विषय है, न कोई जीवा इंद्रिय का विषय है और न कोई नेत्र का विषय है। ये तो केवल समझो कि त्वचा का विषय है और कोई काम की चीज ये नहीं है। तो ये चंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरे विषय में इतना सूक्ष्म विचार किया ऐसा तुम अपने शरीर के विषय में भी सूक्ष्म विचार कि ये जो तुम्हारा शरीर और इसके मां जो इंद्रियां और मन बुद्धि इसमें तुम बैठे हो, तो एक प्रकार से ये क्यों नहीं विचार करते, जैसे चंद्र को देख करके ये विचार किया कि चंद्र कौन काम की चीज है, ऐसे तुम्हारा जो शरीर है कौन काम की चीज है, इस पर भी थोड़ा विचार करके देखो। ये तुम्हारा जो शरीर है, इस तुम मर जाओगे, इसकी खाक हो जाएगी, तुमने इसकी वो खाक किसी के काम आवेगी, जड़ी हड्डियां भी किसी के काम आवेगी। और ये जो तुम्हारा शरीर है, ये एक प्रकार से इस काम की चीज है कि इससे सबकी सेवा बन सकती है, और सबकी सेवा के लिए भगवान ने तुम्हारे को ये शरीर दिया, और ऐसे शरीर को पाकर के ठीक इसका उपयोग नहीं करोगे तो समझो कि तुम अपने कर्तव्य से घिरोगे और इसका नतीजा खराब होगा। कि चादर से हम लोग काम लेते हैं, किंतु चादर एक प्रकार से बदले में हम लोगों से कुछ भी काम ये नहीं लेती, तो ये चादर हमारे को निष्काम भाव से कहलाती है कि ये अपना जो शरीर है इससे दुनिया की सेवा करनी चाहिए और उसके बदले में कुछ लेना नहीं चाहिए, देना चाहिए लेना नहीं चाहिए। ये कर्तव्य रसो हमको ये चादर रसो बतला रही, लेना जो है वो तो एक सिर पर भार बढ़ाना है और बोझा बढ़ने से संसार सागर के मां डूबना है, और देना है वो हल्का होना है, तो इसलिए देना ही देना चाहिए लेना नहीं चाहिए। जो आदमी किसी नदी के पार जाना चाहता है तो वो एक प्रकार से जल का त्याग करता चला जाता है, तो उस पार चला जाता है, और जब जल का त्याग करना छोड़ देता है, पानी निकालना छोड़ देता है, वहीं डूब जाता है। तो जब तक हम जीते रहे समझो कि ये संसार के जो पदार्थ और भोग हैं इसका त्याग करते रहे तो उस पार चले जाएंगे, और जहां त्याग करना बंद किया वहां डूब जाएंगे। तो ये चंद्र हमको ये बात सिखला रही है, चंद्र ये बात बतला रही है कि चंद्र कहती है कि मैं देती हूँ सबको आराम, किंतु मैं बदले में किसी किसे लेती नहीं। तो ये बात तुम सीख लो कि तुम दो और ले मत। तो चंद्र तो कहती है कि मैं एक अंश मात्र का सुख पहुंचा सकती हूँ, कवचा को सुख पहुंचा सकती हूँ, और कान को और नासिका को जीवा को मैं कुछ नहीं पहुंचा सकती, और तुम तो मनुष्य हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। हम पशु को देखते हैं, गधे को देखते हैं, देखकर यही ज्ञान होता है कि यह भार ढोने वाला पशु है। हम गधे से वेद पढ़ना चाहें या वेद पढ़ाना चाहें तो काम नहीं हो सकता। हम कहें कि गधे से कि भी आज तुम एक प्रकार से थी, हमारे पिता का श्राद्ध है, तुम अपने श्राद्ध के काम में मदद कर दो, समझा, या फूल पत्ती जुटा दो, या एक प्रकार से तुम अपने वेद का पाठ ही कर दो, एक तर्पण हमको सुना दो। तो ये लोग कही अच्छा मूर्ख, वो काम गधा नहीं कर सकते, वो तो बोझा ढो सकता है। तो तुम्हारा जो ये शरीर है, मनुष्य का शरीर, ये सबकी सेवा आपने कर सकता है, उसका ये कर्तव्य है कि सबकी सेवा करना निष्काम भाव से। तो ये सब दुनिया को सुख पहुंचा सकता है, सारी दुनिया को सुख पहुंचा सकता है, तो उसका ये कर्तव्य है कि सब को भोजन देकर के भोजन करे, जल देकर के जल पीवे। यदि वो सबको भोजन कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए हमारे शास्त्रों ने बताया कि बलविश्व करने से सब दुनिया को भोजन पूंज जाता है। अग्नि के मां जो आहुति दी जाती है वो सूर्य को प्राप्त होती है, और सूर्य के द्वारा वर्षा होती है, और वर्षा से संसार के मां अन्न होता है, वो सबको प्राप्त होता है। अन्ना भवंती भूतानी पर्जन्यादम संभव विज्ञात भक्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद भव। अन्न से सारे भूत प्राणों की उत्पत्ति होती है, सबका पालन होता है, और वह अन्न जो है सो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वो वर्षा है सो हम जो यज्ञ करते हैं, उत्तम जो कर्म करते हैं, उसके फलस्वरूप के मां यज्ञ होता है, और उत्तम जो कर्म है ये मनुष्य के द्वारा होते हैं, हम मनुष्य है, तो इसलिए हम मनुष्यों को उत्तम कर्म करने चाहिए। और उत्तम कर्म यही है कि सबको भोजन देकर भोजन करना, तो ये बलिविश्व जो है इसमें सबको भोजन दिया जाता है। अग्नि में जो आहुति दी जाती है, प्रथम जो परमात्मा को, फिर प्रजापति ब्रह्मा को, सब देवताओं को आहुति दी जाती है, उनकी तृप्ति से सबकी तृप्ति हो जाती है, परमात्मा की तृप्ति से सबकी तृप्ति हो जाती है। तो ये बड़ा उत्तम भाव, ये भाव ही तो कल्याण करने वाला है, इस बात को ख्याल में रख करके, और हम लोगों को सबको भोजन देकर भोजन करना चाहिए, अर्थात बलविश्वय कर करके भोजन करना चाहिए। बलविश्वय लेकर जो भोजन करना उससे पापों का नाश होता है और शांति मिलती है। यक्षिशा सेना संतो मुचनते सर्व किल विषयी गुंजते थे तोरम पापा ये पचनते आत्मकार ना। ये बात भगवान ने गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में कही है। इसका यह है कि यक्ष से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो आदमी समझो कि अपने शरीर पोषण के लिए भोजन बना करके खाता है वो तो पापी पाप को ही खाता है। इस प्रकार से इसकी निंदा की गई है। तो इस बातों को सोच करके हम लोगों को नित्य बलि विश्वास करना चाहिए। उसके करने के न तो कोई विशेष समय लगता है, 3 मिनट का समय काफी है और न उसके वास्ते कोई पैसे भी खर्च होते हैं। मामूली श्रम जो कि रोज 2-4 पैसे खर्च होते हैं, अपने भोजन में से थोड़ा हिस्सा निकाल ले समझो कि 1 मुट्ठी भात से 3 काम उठ जाता है। और वो भात भी या तो अग्नि के मुख में या गऊ के मुख में उसका उपयोग भी ठीक होता है या मनुष्य के मुख में दिया जाता है तो देखने के माँ भी उपयोग ठीक होता है और प्रणाम भी साथ में उसका अच्छा बतलाया है। इसलिए समझो कि ऋषि मुनि लोग और समझो कि आपने अच्छे जो गृहस्थी हैं वे लोग आपने नित प्रति बलिश्वय किया करते थे और अतिथि को देखकर के भोजन करा करके भोजन किया करते थे जिससे उनका जीवन सफल हो जाया करता था। तो हम मनुष्य हैं, हमको मनुष्य उचित कर्म करने चाहिए। तो मनुष्य एक प्रकार से सब कुछ कर सकता है। हम लोग कोई वक्त में जो तर्पण करते हैं तो प्रथम जो है तो तर्पण का जो जल है उससे देवताओं को अपने तृप्त करते हैं। उसके बाद के बीच के वहाँ समझो कि अपने ऋषियों को और फिर मनुष्यों को और फिर पितरों को और फिर यान मात्र सब प्राणियों को सभी को एक प्रकार से उससे तृप्त करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो भाव इसका यह है कि सबको जल दे करके फिर जल पीना कितना ऊंचा भाव है। तो ये काम मनुष्य कर सकता है, कोई पशु पक्षी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से थी और भी जितने जो बहुत से काम मनुष्य उचित है वो करने चाहिए। मनुष्य सबकी सेवा कर सकता है, समझो देवताओं की, पितरों की, ऋषियों की, मनुष्यों की, पशुओं की, जानवरों की, पशु पक्षी कीट पतंग आदि जितने दुनिया में जानवर है उनकी सबकी सेवा कर सकता है तो मनुष्य कर सकता है। मनुष्य के समान और कोई दूसरा प्राणी नहीं है कि जो सबकी सेवा कर सके। तो ये कर्तव्य हमारे कुछ अपने चंद्र से मिलता है। तो चंद्र जो है ये हमको सिखलाती है कि मुझको देख करके जो एक ज्ञान पैदा होता है कि किस काम की चीज है और उसी काम में तुम मुझको काम में लाते हो। इसी प्रकार तुम अपने शरीर को भी देखो कि ये शरीर कौन काम की चीज है, ये मनुष्य का शरीर किस काम की चीज है, ऐसा समझ करके और इसे को उसी काम में लगाना चाहिए। ये मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, किंतु जो मूर्ख इस बात को नहीं समझ करके और विषय भोगों में लगा देता है उसके लिए कुछ राजी है तो निंदा करते हैं कि नर तनु पाए विषय मन देही पलटी सुधाते जो मनुष्य के शरीर को पाकर के विषय भोगों में मन लगाता है वह मूर्ख अमृत के बदले के वहां विष को ऐसा ग्रहण करता है। ये मनुष्य का शरीर समझो कि भोगों में लगाने के लिए नहीं मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन है और जो परमात्मा की प्राप्ति है सब अमृत के समान है। तो इसकी अवहेलना करके हम भोगों के वहां अपने शरीर को लगावे, मनुष्य शरीर को लगावे तो अमृत के बदले में विष का बदलना है। उस अमृत के पान से भी तो मुक्त हो जाता है, वो तो अमर हो जाता है। और विषयों के भोगने से भी जैसे विष के भोगने से मनुष्य मर जाता है ऐसे विषय के भोगने से जन्मता मरता रहता है। तो ये सब बातों को सोच करके जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम को शीघ्र कर लेना चाहिए। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, समझो कि क्षण में हार्ट फेल होकर के मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। हमारे पास में कोई ऐसी गारंटी नहीं या हमारा शरीर कोई वज्र का नहीं, समझो कि हम लोगों को अवश्य मरना है। और उस मृत्यु का हमको ज्ञान नहीं है कि भी कब आकर मृत्यु प्राप्त हो जावे। अभी 1 घंटा के भीतर में मृत्यु आ जावे या 1 मिनट के बाद ही मृत्यु आ जावे तो हम ना नहीं कर सकते। सब काम छोड़ करके हमको उसी वक्त जाना होगा। तो इस बात का ध्यान आ जावे तो फिर समझो कि जल्दी इसको तुरंत वैराग हो सकता है, जल्दी से जल्दी इसके चित्त में वैराग हो सकता है। और उस वैराग के अनुसार यदि अपने साधन के वहां तत्परता से लग जावे तो परमात्मा की प्राप्ति में और विलम्ब ही क्या है। समझो कि यदि बिजली स्विच हो गई है तो स्विच दबाने के साथ एक प्रकार से रोशनी हो जाती है, ये नहीं कि भी आपने बहुत समय लगता है। तो इसी प्रकार से कि हमारी जब तैयारी हो जाती है तो फिर परमात्मा की प्राप्ति में कोई विलम्ब नहीं है, हमको तैयार रहना चाहिए। फिर भगवान तो तैयार है ही, भगवान तो तैयार है ही, भगवान सबके बीच के माँ समान भाव से स्थित है। और जो भक्ति करे उसके माँ विशेष रूप से बतलाया, उसका कारण यह है कि जैसे सूर्य की रोशनी सब जगह के माँ समान भाव से है किंतु आईने के माँ सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो उज्जल है। इसी प्रकार से जिसका अंतःकरण उज्जवल होता है उसमें समझो कि परमात्मा का दर्शन एक प्रकार से प्रत्यक्ष की भांति ऐसे होता रहता है। इस वास्ते हमारे हृदय को उज्जवल बनाना चाहिए, मन के भीतर के बीच के मां जो मल विक्षेप आवरण है उसके नाश के लिए, हमको मल के नाश के लिए निष्काम कर्म करने के लिए जो बतलाए, या ईश्वर के नाम का जप करने के लिए जो बतलाया गया, और विक्षेप के नाश के वास्ते परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, और इस आवरण दोष के नाश के वास्ते सत्पुरुषों का संग, और सत्पुरुषों का संग नहीं मिले तो सत्शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार के करने से मल विक्षेप आवरण का सर्वथा नाश हो सकता है, और फिर हमारा अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो साक्षात परमात्मा का दर्शन होने लगता है। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है, ये तो सबके लिए एक प्रकार से तैयार है और सबके ऊपर उनकी दया है और सबके हृदय के मस्तित है, किंतु हृदय की मलिनता के कारण से आवरण के कारण से वे दिखते नहीं है, चंचलता के कारण वे दिखते नहीं है। इस वास्ते मल विक्षेप और आवरण के नाश करने के लिए जो आपको उपाय बताया उसके अनुसार प्रयत्न करना चाहिए, और प्रयत्न करने से सब कार्य की सिद्धि हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य का शरीर मिला है, किंतु उस बात को हम भूल गए, इस कार्य से संसार के मां बढ़ते फिरते हैं। यदि हम इसी प्रकार से अपने भावी समय को बिताते रहेंगे तो हमारे लिए बहुत भारी हानि है, हमको आगे जाकर के घोर पश्चाताप करना पड़ेगा, और उस पश्चाताप के करने से कोई गर्व नहीं करेगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सो बरत तर दुख पाव ही सिर धुनी धुनी पचिताल काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वे आगे जाकर के घोर पश्चाताप करेगा, सिर धुन धुन करके पश्चाताप करेगा, काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगावेगा। काल को तो ये दोष लगावेगा कि कलयुग के समय के कारण से मैं कुछ साधन नहीं कर सका, और तकदीर को ये दोष लगावेगा कि मेरे तकदीर में यही बात लिखी हुई थी, और भगवान को ये दोष लगावेगा कि भगवान मुझको मदद नहीं करी, किंतु ये सब बात झूठी है। इस मापक समझ करके के और समझो कि जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम को शीघ्र अति शीघ्र कर लेना चाहिए, जो आगे जाकर के हमको घोर पश्चाताप करना नहीं पड़े। नारायण 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 कहेंगे तो हमारे को घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। परमात्मा की हम लोगों पर बड़ी भारी दया है। प्रथम तो यह है कि भगवान ने हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया, और मनुष्य का शरीर देकर के फिर इस उत्तम देश के वहां भेजा। इसकी सामर्थ है कि जो कोई यहाँ आ सके वो तो भगवान की कृपा से ही यहाँ आना होता है। और फिर यह है कि ये उत्तम समय हमको मिला जो कलयुग के समय के बीच के मां जल्दी उद्धार हो सकता है, और फिर उत्तम धर्म के मां हम लोग प्रकट हुए, और समय समय के ऊपर सत्संग की बात भी मिल जाती है, और पुस्तकें भी हम लोगों को सहज में ऐसो अध्यात्म विषय की पुस्तक भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुस्तक सहज में हम लोगों को आपने मिल सकती है। सब बातों का सुविधा है, ऐसा सुविधा पात्र के बीच हम अपनी आत्मा का कल्याण न करें तो हमारी मूर्खता के सिवा क्या बात है, हमारे लिए बहुत दुख की बात है, लज्जा की बात है। यदि ऐसे समय में हम सावधान नहीं होंगे तो समझो कि तुलसीदास जी कहते हैं जो न तारे भव सागर है नर समाज ऐसे पाए सो कृतनी नक मंदमती आत्म मन गति जाय सिया वदे राम चंद्र सिया। जो ऐसे मनुष्य के शरीर को पाकर के अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता है, या इन सब सामग्रियों को पाकर के इस संयोग को पाकर के ऐसे समाज को पाकर के, ऐसे संघ को पाकर के यदि मनुष्य अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता है तो वो मन बुद्धि है और आत्म हत्यारा है। आत्मा के त्याग करने वाले की जो दुर्गति होती है उसकी दुर्गति ऐसा होगी और वो मूर्ख है, इस प्रकार से उसकी निंदा की गई है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम लोगों को अपनी आत्मा का शीघ्र से शीघ्र उद्धार